कह रहा हूं, निंदा के शब्द कह रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं अज्ञानी हूं। यह एहसास अपने भीतर होना चाहिए, क्योंकि शब्द तो निकल जाने के बाद वापस लौट के नहीं आते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, ठीक ऐसे ही अपने शब्द वापस लौट करके नहीं आते। हम उनका उपयोग संभाल करके करें, क्योंकि वैसे तो वचन की सामर्थ्य दो इंद्री जीव से मिल जाती है, दो इंद्री जीव से लेकर वचन योग है, लेकिन अपन संगी पंचेंद्री मन वाले जीव हैं, अपन के पास भी वचन योग है, लेकिन उस वचन का कैसे उपयोग करना ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। एक घटना छोटी सी है और बस समय तो आपका पूरा हो गया जिनवाणी स्तुति के पहले, और दो मिनट अपन रुकेंगे, संजीव भैया जी और आपको बढ़िया सी जानकारी देंगे। एक कहानी सुनो, क्योंकि वो याद रहना है बाहर निकल के, बाकी जो कजू कही वो याद ही नहीं रहने, वो तो है कि नहीं, वो कहानी भर याद रहेगी, इसलिए जरूरी है सुनना, तो नहीं तो कछु याद नहीं रहो कल ले गए। तो उसमें क्या हुआ कि एक किसान था बेचारा, गरीब, लकड़ी बेच करके अपना घर चलाता था, सो जंगल में जाकर के लकड़ी लाता था और बेच करके अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया और प्रेम की भाषा बिना बोले भी समझ में आती है, वो सिंह के नहीं बोलने पर भी एहसास हुआ उसे कि शायद पीड़ा में है और मुझे बुला रहा है। लौटा और सिंह के पास, जिससे अभी भयभीत था, पहुंचा तो सिंह ने भी अपना पैर आगे की तरफ बढ़ा दिया। उस पैर में स्पष्ट दिख रहा था कि कोई कांटा चुभ गया है और बहुत जबरदस्त चुभा हुआ है। उस किसान ने डरते डरते आगे बढ़कर के उस कांटे से उसको राहत दिलाई, निकाल दिया। कांटा निकल जाने के बाद शेर ने भी अच्छा महसूस किया और उठ करके चुपचाप शेर वापस जंगल में चला गया कि तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं करूंगा, अपने उपकारी का बिगाड़ में कर कैसे सकता हूं। ये एहसास के अपने भीतर है, जिसने अपने ऊपर उपकार किया, सबसे पहले किसने उपकार किया, माता पिता ने, जो हमें खाना पीना बोलना चालना तक नहीं आता था वो सब सिखाया और हमें इतना बड़ा कर दिया, और बड़े होने के बाद हम माता पिता के सिर पर पैर रखने के लिए तैयार हो गए। कितना एहसान फरामोशी है अपने भीतर। सम्मान तो दूर रहा, अपमान करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने उपकाई के। विचार करें अपन, वो सिंह था, पशु था, लेकिन अपने उपकारी पर उसे भय से मुक्त करके वापस लौट गया। किसान भी चला गया वापस। जब दूसरी बार किसान आया तो देखा कि सिंह बैठा हुआ है, फिर डर के भागने लगा, तो फिर देखा कि सिंह जैसे बुला रहा हो। वो पास में पहुंचा तो सिंह ने कहा कि अपनी भाषा में कि डरने की आवश्यकता नहीं, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया था, आओ मैं भी अब तुम्हारे ऊपर उपकार करके तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का उपाय करता हूं। और ले गया वो गुफा के अंदर। गुफा में सैकड़ों लोगों के हीरे जवाहरात के आभूषण पड़े हुए थे, उठा लो जितने चाहिए हो। किसान तो दंग रह गया, हीरे जवाहरात के आभूषण लेकर के वो घर वापस लौट गया। उसने तो लेकिन इतना सब संपत्ति के बाद भी उसने प्रदर्शित नहीं किया, वैसे ही कपड़े, वैसे ही जंगल में आना। और जब एक दिन संपत्ति हो जाने पर उसने अपनी बेटी का विवाह करने की सोची, तो सबसे पहले किसे निमंत्रण दूं, मेरा मित्र तो सिंह ही है, तो सिंह के पास निमंत्रण देने आया कि भाई मेरी बेटी के विवाह में तुम आना। अब बात अलग है कि अपन चिट्ठी भेज देता अकेली कि आऊने हो तो आ जाइयो, ने आओ तो अच्छो, भीड़ कम नहीं तो वेलकम है कि नहीं ऐसा कह देते, अपन कहते नहीं है लेकिन भाव तो ऐसे ही रहता अपने अंतरंग में। उसने बुला लिया, सिंह को बुला लिया, बतावा। और सिंह आ भी गया, कहानी में आया था, सच्ची में आया होता तो गड़बड़ हो जाती अब भी। तो कहानी में वो आ गया और बेटी के विवाह के समय सिंह को देख करके सभी लोग घबराए। तो किसान की जीवन साथी ने वचन बोल दिए कि घबराने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारा गधा है जो कि हमारी सेवा में उपस्थित रहता हमेशा। ये वचन सुन करके सिंह उल्टे पांव जंगल में लौट गया। किसान को जब मालूम पड़ा कि सिंह आया था और उस सत्कार के बिना ही उसे लौट जाना पड़ा, जीवन साथी के कुछ कह देने की वजह से, उसने सोचा कि मैं सिंह के पास जाकर उससे क्षमा याचना कर लूं। वो सिंह के पास पहुंचा तो जंगल में सिंह बैठा हुआ था, पास में एक हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, सिंह ने उसे देख करके कहा कि भाई इसे जोर से मेरे सिर पर मारो, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने दूंगा। अब तो डरा वो किसान कि मैं तो आया था क्षमा मांगने और मेरे से और अपना उपद्रव करने के लिए कह रहा कि मेरे सिर पर कुल्हाड़ी मारो। अब ठीक है भाई, क्या करें, नहीं तो मरण निश्चित है। तो उठा करके अपने हाथ की कुल्हाड़ी और सिंह को उसके माथे पर बहुत जोर से कुल्हाड़ी मार करके वहीं कुल्हाड़ी छोड़ करके वो भागा किसान। सिंह की क्या स्थिति हुई उस कुल्हाड़ी के लगने से, ये देखने का वक्त भी उसके पास नहीं था। कुछ दिन के बाद पुनः उसे एहसास हुआ कि देख के आए सिंह की क्या स्थिति है। सो 15 दिन महीने भर के बाद जब वो जंगल में डरते डरते पहुंचा तो सिंह बैठा हुआ था। अरे चलो कम से कम जीवित तो है, हमने तो जोर से कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, वैसे संभल के ही मारी थी, सो बच गया। लेकिन कैसा है उसका घाव ये तो देख ले। तो सिंह के पास जाकर के सिंह ने स्वयं कहा कि देखो जरा, जो तुमने कुल्हाड़ी मारी थी उसका घाव मिट गया कि नहीं। तो देखा तो घाव तो सूख गया था। तब सिंह ने जब किसान से ये सुना कि तुम्हारा घाव तो मिट गया, तब सिंह ने कहा कि भाई तुम्हारी मारी हुई कुल्हाड़ी का घाव तो 15 दिन और 20 दिन में मिट गया, लेकिन तुम्हारी जीवन साथी ने जो मुझे गधा कहा था वो घाव मेरे मन में अभी भी है, वो तो नहीं मिटा। भैया सिर्फ इतना ही अपन ध्यान रखने की चीज है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कि हम अपने वचनों का उपयोग ऐसा ना करें जिससे कि दूसरे को पीड़ा हो और अपन को भी उस वचन के कहने से बाद में एहसास हो कि यह वचन ठीक नहीं था। अपना वचन प्रयोग करते समय अगर इस चीज का अपन ध्यान रखें कि वैसे वचन मैं दूसरे से सुनकर के पीड़ा पाऊंगा, तो ऐसे ही मैं उन वचनों को बोलकर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में निमित्त बनूंगा, ये सोच करके अगर अपन अपने वचनों को संभाल लें तो अपना जीवन अपन अच्छा बना सकते हैं। छोटी छोटी सी 3 बातें हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपना कार्य करें। सबके बीच हम रहते हैं इसलिए परस्परता का बोध अपने जीवन में हो और अपने वचनों का प्रयोग अपने भावों के आदान प्रदान के लिए अपन करते हैं तो बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि वचनों का घाव बहुत गहरा होता है। वचन मरहम का भी काम करते हैं और चोट पहुंचाने का भी काम करते हैं, और एक बार बाहर निकल जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा विचार करके अपन अपने जीवन को